तो आज हम लोग थर्टीन चैप्टर पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तीन भागों में डिवाइड था। भगवान के बारे में जानकारी और भगवान की भक्ति करने के पर्याय ऑप्शंस, और फिर लास्ट में भक्तों का स्वभाव क्या होता है। तो इस ट्वेल्थ चैप्टर के शुरू शुरू में ही अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे बताइए कि जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान तुरंत आंसर देते हैं कि जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और जो निराकार भक्त हैं वो लोग भी मेरे पास आते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है उनको आने में। बहुत समय मतलब 1-2 साल, 10 साल, 15-20 साल, ऐसा नहीं, कई जन्म लग जाते हैं उनको मेरे पास आने में। तो हमने पहले चर्चा किया था कि भगवद गीता को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला भाग 1-6 वो कर्म योग के बारे में चर्चा ज़्यादा है वहाँ पे, और फिर 7th चैप्टर से लेकर 12th चैप्टर तक भक्ति योग के बारे में चर्चा है, और फिर जो लास्ट के 13 से 18 अध्याय हैं वहाँ पे ज्ञान योग की चर्चा है। तो अभी भगवान ने सार तो भगवद्गीता में ऑलरेडी 9th चैप्टर में बता दिया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझ में अपना मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, इस तरीके से। परंतु अभी 12th चैप्टर भी हो गया, जिसमें भगवान ने प्योर भक्ति के बारे में बताया, कैसे प्योर भक्ति की जा सकती है, भक्तों के स्वभाव के बारे में बताया। तो अभी क्या रह गया है जिसको हमें जानना है? तो चतुश्लोकी भगवद गीता जो हम लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे भगवान ने बताया कि किस तरीके से अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत बताने माम। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि सारी चीजें मुझसे निकल रही हैं, फिर ऐसा जानते हुए सभी भक्त जो है वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि देता हूं जिस तरीके से वो सतत होके युक्त होके मेरी भक्ति करना शुरू करते हैं। आगे भगवान कहते हैं चतुश्लोकी में, मैं उनके हृदय में जो अंधकार का अज्ञान भरा हुआ है उसको खत्म कर देता हूं। कैसे? ज्ञान का प्रकाश के द्वारा। तो भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं, जिसके द्वारा वो लोग जान पाते हैं कि मैं सारी वस्तुओं का स्रोत हूं। तो अभी भगवान ने हालांकि भक्ति योग के बारे में बताया, लेकिन ये जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी है प्राप्त होना। ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिसके द्वारा हम लोग भक्ति में सुगम तरीके से चल सकते हैं। हम थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। तो जो भी भक्ति में जुड़ जाता है भगवान उनको जो है मुक्त कर देते हैं, उनको अपने पास ले लेते हैं। लेकिन तीन तरीके के लोग होते हैं जो भगवान के डायरेक्ट शरण ग्रहण नहीं करते हैं। एक होते हैं नास्तिक, जो कि भगवान को मानते ही नहीं है। दूसरे होते हैं जो देवताओं के उपासक रहते हैं, जो देवताओं की भक्ति करते हैं, वो भगवान के पास नहीं आते, देवताओं के पास रहते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं जो निर्विशेष के उपासक होते हैं, निराकारवादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो ये लोग दूसरी चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन हम अभी जानते हैं कि वास्तविक रास्ता क्या है भगवान को प्राप्त करने का। तो वो रास्ता क्या है? भक्ति योग के द्वारा। अभी भगवान उसी के बारे में और बताना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा हुआ है मैं उसको डिलीवर कर देता हूं, मैं उसको जन्म के चक्र से छुड़ा लेता हूं। तो अभी कोई सोच सकता है कि अगर भगवान ने यह बोल ही दिया है कि जो मेरी भक्ति में लगा है उसको मैं डिलीवर कर देता हूं, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जो भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति में पूर्णतया लगा हुआ है, पूर्ण रूप से जो भक्ति में लगा हुआ है, हम लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। इसीलिए कभी कभी हम भक्ति करते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, फिर भक्ति, फिर इंद्रिय तृप्ति, फिर भक्ति, फिर इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति करते रहने के कारण क्या होता है, हम पूर्ण रूप से समर्पित भगवान के प्रति नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा क्यों ना भक्तों को ज्ञान बताया जाए, ज्ञान योग भी बताया जाए। उसके द्वारा क्या होगा, इस संसार में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें भक्तों को पता चलेंगी। उससे क्या होगा, भक्त लोग जो है वो सतर्क रह पाएंगे। जब हम सतर्क रहेंगे, जैसे चोरों से सतर्क रहा जाता है, डाकुओं से सतर्क रहा जाता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शहर में जा रहा है और उसको बोला जाए कि भाई वहां पे बहुत लोग पॉकेट मार लेते हैं, चोर हैं, तो वो व्यक्ति सतर्क हो जाता है और वो अपने जो उसका पर्स है उसको संभाल के रखता है, उसकी ज्यादा केयर करता है। तो ऐसे ही अगर हम सतर्क हो जाएंगे तो भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा हम सतर्क हो जाएंगे और हम इस संसार में रहते हुए उस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस संसार का नियम कैसा है, संसार में अगर कोई भोला भाला बन के रहता है तो माया उसको बहुत ठगती है, बहुत धोखा देती है। खास करके जब शुरू शुरू में हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो बहुत सारे प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में। हाँ, जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक बहुत सारे प्रलोभन आते रहते। तो हमें क्या, हमने ये भक्ति शुरू कर दिया है, अभी बीच में भक्ति करते करते बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी जो हमको भक्ति से दूर लेना ले जाना चाहेंगी। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको भक्ति में धैर्यता दिखानी चाहिए, स्थिरता दिखानी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे भक्ति किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं है। अगर हम कभी ढीले पड़ गए भक्ति करने में तो माया जो है हमको भक्ति से दूर लेके चली जाएगी। तो अभी स्थिति यही है, कभी हम ढीले पड़ जाते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं, कभी बहुत ध्यान से हम जप करते हैं, कभी ऐसे ही करते हैं जब, कभी नहीं करते हैं जब, कभी माला, कभी मंदिर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कभी हम कुछ नियम मनाते हैं, उन नियमों को कुछ तोड़ देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से माया के कारण हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि अभी मैं तुम अर्जुन को मर्म बताता हूं, ज्ञान बताता हूं, जिसके द्वारा इस संसार में क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पता चलेगा। तो जब व्यक्ति को पता रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो व्यक्ति क्या है, वो सतर्क रहेगा और वो माया से बच जाएगा। तो जब तक हमारी डिपेंडेंसी, हमारी जो निर्भरता है वो भगवान पे नहीं होती, हमारा पतन होने का चांस बहुत रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम स्वयं से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति जो है बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। तो भगवान पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो जरूर होनी चाहिए, डिपेंडेंसी के द्वारा ही हम इस संसार में भक्ति कर सकते हैं। आपको पता होगा एक विश्वामित्र करके एक ऋषि हुए, विश्वामित्र ऋषि उन्होंने 70,000 साल तक तपस्या किया। हाँ, उनका 3 बार वास्तव में पतन हुआ। एक बार जब उन्होंने 70,000 साल तक तपस्या किया, उसके बाद इंद्र ने एक अप्सरा को भेज दिया, मेनका को भेज दिया, और मेनका के कारण उनका पतन हो गया, उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई और मेनका से उनकी एक पुत्री हुई शकुंतला। इस तरीके से जो भी उन्होंने तपस्या की थी 70,000 साल तक वो सब 0 हो गई। क्यों? भक्ति में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो तपस्या की थी उस तपस्या में ऐसा था, वो तपस्या जैसे ही उन्होंने इंद्र तृप्ति किया वो 0 हो गई। तो उन्होंने फिर से तपस्या किया, अब इस बार फिर से इंद्र ने एक दूसरी अप्सरा को भेज दिया, रंभा जिसका नाम था। तो रंभा आके जैसे मेनका ने विश्वामित्र को डिस्टर्ब किया था, ऐसे ही रंभा ने भी आके डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो जब विश्वामित्र की आंख खुली तो विश्वामित्र को क्रोध आया कि देखो 70,000 साल की तपस्या मेरी पिछली बार चली गई है और ये फिर से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। तो विश्वामित्र को क्रोध आया, उस क्रोध में उनकी जो तपस्या थी वो भी चली गई। इस तरीके से 2 बार पतन हुआ। तीसरी बार एक बार और एक राजा था त्रिशंकु करके, वो राजा त्रिशंकु वो स्वर्ग जाना चाहता था, इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता था। तो सबने मना कर दिया, वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तुमको भेजूंगा स्वर्ग। तो विश्वामित्र ने उसको स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। अब विश्वामित्र ने इधर से स्वर्ग भेजने का प्रयास किया और उधर से इंद्र ने उसको धक्का दे दिया। अब वो बीच में लटक गया, इधर से वो नीचे गिरने नहीं दे रहे और उधर से वो ऊपर आने नहीं दे रहे। ऐसा करके बेचारा बीच में फंसा रहा। तो फिर विश्वामित्र ने एक स्वर्ग का निर्माण किया, नकली स्वर्ग का निर्माण किया और त्रिशंकु को उधर भेज दिया। तो उनकी जो तपस्या थी वो उसमें नकली स्वर्ग बनाने में वो भी खत्म हो गई। तो इस तरीके से उनका 3 बार पतन हुआ। कारण क्या था? क्योंकि भगवान की शरण उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, वो अपने दम पे कुछ करना चाह रहे थे। तो जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनता है, उसके अंदर जो वासनाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती। वासनाएं कैसे, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग घास देखते हैं, घास को काट दिया जाता है लेकिन घास फिर से निकल आती है। ठीक वैसे ही हमारे हृदय की जो हमारे जो चित्त में इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं भरी हुई हैं, वो भले ही हम लोग कुछ समय के लिए हटा देते हैं, काट देते हैं, लेकिन फिर से वो हमारे हृदय के अंदर रहती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गंदा पानी होता है, धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है, मिट्टी जो है नीचे जो है डूब जाती है। तो कभी कभी लगता है ज्ञान में सब कुछ सही हो गया है, अभी मैं ज्ञानी बन गया हूं, मुझे सब पता है, अभी मैं गलत नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी गलती हो सकती है, कभी भी पतन हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से एक ऐसे कृष्ण कॉन्शियस गुरु, एक कृष्ण तत्ववेता गुरु, उनकी शरण ले लेता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय की सारी वासनाएं पूरी की पूरी मिट जाती हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है, ये इतना विशेष मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में ऐसा संभव है। तो इस मार्ग में कोई डर नहीं है, भक्ति मार्ग में पतन होने का डर नहीं है। अगर पतन हुआ भी तो भी फिर से चांस मिलता है। तो अभी कृष्ण जो है वो इस भौतिक संसार के बारे में ज्ञान देंगे, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा हमें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि हम भक्ति मार्ग को अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी साथ में कैसे जीना है, इस संसार में कैसे रहना है, वो सब हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने 12वें अध्याय में जाना था स्मरणात्मक भक्ति, जिसमें भगवान का सतत स्मरण होता है, फिर मननात्मक भक्ति के बारे में जाना था, फिर भगवान के लिए कर्म करो, फिर सर्व कर्म फल त्यागी, ये चार चीजों के बारे में, एक्चुअली हमने चार पांच चीजों के बारे में जाना था, उन्होंने स्टेप्स बताए हैं हमको। फिर हमने जाना था कि भक्तों के स्वभाव के बारे में, डिवोटेड डिस्पोजिशन, भक्तों का स्वभाव क्या होता है। तो भक्ति श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो श्रील प्रभुपाद से कहते कि वैष्णवों का जो पथ है, वैष्णवों का जो रास्ता है, वो इतना शुद्ध है कि वहां पे न तो कोई ईर्ष्या है, ना कुछ इच्छाएं हैं इस संसार को भोगने की। तो जब किसी के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो दूसरों से घृणा करता है या प्रेम करता है, या फिर उनको जो है इस संसार में उनसे ईर्ष्या करता है। तो ज्ञान जो है वो क्या कर सकता है, ज्ञान हमको जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे ऊपर उठा सकता है और हमको ब्रह्म ज्योति के स्तर तक पहुंचा सकता है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञानी योगी जो होते हैं, वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म ज्योति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर योगी होते हैं, योगियों का क्या होता है, जैसे ज्ञानी जब वो ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं तो बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो ऐसे ही योगी जो हैं वो एक स्थिति पे आते हैं तो उनको योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती, तो सोचते चलो योग सिद्धि प्राप्त हो गई, चलो लोगों को दिखाएं, और इस तरीके से उनका भी पतन हो जाता है या वो भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कर्मी ज्ञानी और योगी वो बाहर जाना चाहते हैं, इस संसार से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कई सारी चीजें उनको इस संसार से बाहर जाने पे रोक लेती, वो नहीं जा पाते। अभी देखिए इस संसार में देखा जाता है कि लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी करके क्या करते हैं, बम बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को मारा जा सके, और यही दूसरे देश वाले कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी बम बना रहे हैं जिससे कि और लोगों को मारा जा सके। मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बुद्धि जो है वहीं की वहीं, क्या फायदा हुआ। अगर कर्मी ज्ञानी योगी बना भी तो क्या फायदा हुआ, लेकिन जो भक्त है वो वास्तव में शांति चाहता है, वो शांति से रहना चाहता है, वो भगवान पुरुषोत्तम के जो भक्त होते हैं वो कभी भी अनावश्यक क्रोध तक नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, ना उनके अंदर अशुभ मति होती है। फिर वो करते क्या है, तो वो लोग भगवान की अन्य अन्य बहुत सारी सेवाओं में इंगेज रहते हैं, वो यहां तक कि एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते। सर्व जना सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी रहें, चींटी में भी आत्मा है और मैं उसको क्यों मारूं, ऐसा करके वो उसको भी नहीं मानना चाहते हैं। तो किसी भक्त के अंदर वैकुंठ जाने की जो इच्छा होती है वो गलत नहीं है। कोई कहेगा कि भाई भक्तों के अंदर भी तो इच्छाएं होती हैं, वैकुंठ जाने की इच्छाएं होती, वो गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है, क्योंकि ये इच्छा जो है, अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ जाएगा तो वैकुंठ जाके करेगा क्या, वहां पर जाके भगवान की सेवाएं करेगा, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां तक कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित कीत्वे, आप हमें कहीं भी रखिए, चाहे उच्च लोकों में भेजिए चाहे निम्न लोकों में भेजिए, लेकिन कहां क्या होना चाहिए, मेरी कृष्ण भक्ति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे आप नर्क में रखो चाहे स्वर्ग में रखो, या कहीं और भी रखो, लेकिन भक्ति देते रहो, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं भक्तों की जो क्वालिटीज है उनके बारे में एक क्वालिटी बताते हैं, तुल्यार्थ समदर्शिनः। वो क्या देखते हैं? सबको एक जैसा देखते हैं। तुल्यार्थ समदर्शिनः, सबकी तुलना में वो क्या करते हैं? समदर्शिनः, एक जैसा देखते हैं। यहां तक कि अगर उनको भगवान की इच्छा से उनको हिप्पियों के देश में जाना पड़ता है, अमेरिका जैसे देश में भी जाना पड़ता है, तो हिप्पियों को भी भक्त बना देते हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी। उनको जब वो शुरू किया उन्होंने प्रचार करना, तो कहां शुरू किया? अमेरिका में। अमेरिका में ज्यादातर लोग उस समय हिप्पी हुआ करते थे, एक अलग तरीके की उस समय की क्या बोलेंगे, क्रांति चल रही थी हिप्पीज। वो सब लोग कभी कुछ कपड़े पहनते थे, कुछ लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, हमेशा कई तरीके के नशीले पदार्थों को लेते रहते थे, दारू पीते रहते थे, इधर उधर विचार करते थे, सड़कों पर सोते थे। ऐसी जगह पे प्रभुपाद जी गए भगवान कृष्ण का प्रचार करने के लिए, और वो वहां पे भी सफल हो गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति को उन्होंने अपने हृदय में अंगीकार किया हुआ था, और वो भगवान से वही वही बोलते थे, आप चाहे जहां रखो भक्ति को कंटिन्यू रखने का। तो इस तरीके से भगवान की कृपा से वो ये सब कर पाए। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है हमारे पास, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो हम कर्म करते हैं, कुछ भी, वो सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। बोलना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं चाहे गरीब बनूं चाहे अमीर बनूं, पर कृपया मेरी भक्ति मुझसे मत छुड़वाइए, भक्ति मुझे आप कंटिन्यू करने का मौका दीजिए। अगर मैं ब्रह्मा जी का भक्त भी बन जाऊं, अगर मैं ब्रह्मा जी भी बन जाऊं और आपकी भक्ति छूट जाए तो बेकार है। और मुझे चाहे कीड़ा बना दो एक, लेकिन आपकी भक्ति रहे, मैं आपको हमेशा स्मरण करता रहूं, वो अच्छा है। तो जब वो व्यक्ति कीड़ा बनेगा, भगवान की भक्ति कर रहा होगा, तो उसको प्रसाद खाने को मिलेगा, कहीं ना कहीं से भगवान अरेंज करेंगे, तो प्रसाद से वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान ने 12वें अध्याय में खास करके भक्तों के स्वभाव के बारे में बताया कि भक्तों का स्वभाव क्या होता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 13th चैप्टर, इसका सारांश हम लोग देख लेते हैं। पहले 7 श्लोकों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भगवान ने 8 से 12 में ज्ञान की पद्धति के बारे में बताया है, आत्मा और परमात्मा के बारे में 13 नंबर श्लोक से लेकर 19 नंबर श्लोक तक, और 20 नंबर श्लोक से लेकर 26 नंबर श्लोक तक पुरुष के बारे में बताया है, एंजॉयर भोक्ता के बारे में बताया है। सीकर से सीयर तक जाना, यानी खोजी से दृष्टा तक बनना, उसकी जो प्रोसेस है वो 27 से 29, और दिव्यता के बारे में 30 से 35 तक ज्ञान दिया गया। ये अध्याय में 35 श्लोक हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अध्याय 1 से 6, अध्याय 13 से 18 और 7 से 12 जैसा हमने चर्चा किया। यदि भक्ति श्रेष्ठ है तो ज्ञान का वर्णन भक्ति के खंड के बाद क्यों किया जा रहा है? 12.7 में भगवान कृष्ण ने भक्तों को मृत्यु सागर से बचाने का वचन दिया। अभी 13 से 18 में कृष्ण भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करके इस वचन को पूर्ण करता है। यानी भक्तों को मृत्यु सागर से कैसा बचाया जा सकता है? आवश्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे अगर वो लोग, तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो कोई कह सकता है कि ये तो ज्ञान मार्ग हो गया। नहीं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है तो उसको भक्ति ही माना जाता है। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं, इसीलिए भगवत गीता में भक्ति योग को बीच में रखा गया है। तो अभी अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, यानी क्षेत्र का मतलब क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि, और 6ठा प्रश्न है गेयम, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो ये अध्याय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको जब पढ़ने का प्रयास करेंगे या अभी अभी थोड़ा भी, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम इस अध्याय में दें, देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। तो हम पहले आपको बता देंगे यहां पे ये प्रश्नों के आंसर्स जो हैं, जिसको आगे भगवान बताते हैं उनको हम पहले ही थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे शरीर जो है, शरीर क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र मतलब एरिया या फिर कहें तो खेत, खेत को भी बोल सकते हैं। तो एरिया जो है, क्षेत्र जो है, उसको क्या बोलते हैं? शरीर। अभी शरीर को जानने वाले दो लोग हैं, एक जो शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है यानी कि हम, वो, और दूसरे जो भगवान है। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाले को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा और दूसरी क्षेत्रज्ञ है भगवान परमात्मा। जैसे एक कोई नाई है, बार्बर है, तो बार्बर जो है वो पूरे जीवन में अपने वो उसी दुकान में रहता है, आईने, बहुत सारे आईने रहते हैं, बहुत सारे अस्तूरे रहते हैं, ब्लेड रहती हैं, शेविंग की ब्रश रहते हैं, मशीन रहती है, और बालों को देखता रहता है, कई सारे ग्राहक उसके पास आते रहते हैं, ये सारी चीजें वो देखता रहता है। तो उस व्यक्ति के लिए, उस बार्बर के लिए एक क्षेत्र है। उस बार्बर के लिए क्या क्षेत्र है? जो उसकी निगरानी में रहता है, जो उसको पता रहता है, वो उसका क्षेत्र है। जैसे कभी कभी बच्चों के लिए एक सैंड बॉक्स होता है, सैंड बॉक्स देखा आप लोगों ने, जानते होंगे शायद, वो बालू का बना हुआ रहता है, हाँ, उसके अंदर बच्चे लोग घुस जाते हैं और बहुत देर तक खेलते रहते हैं बच्चे लोग। तो क्या होता है उधर, कभी कभी उसमें एक सीसा करके एक खेल होता है, सीसा, एक तरफ नीचे होता है, एक तरफ ऊपर होता है, एक तरफ नीचे, अभी वो अकेला बच्चा जाता है, एक तरफ जाके बैठ जाता है, तो उसको फिर वो बहुत देर तक उधर बैठा रहता है, परेशान हो जाता है, फिर दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है, ये पहला वाला खड़ा हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से पहले तरफ आता है तो दूसरा वाला खड़ा हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है इस संसार में, जैसे सीसा में होता है, कभी दुख मिलता है तो कभी सुख मिलता है इस संसार में, वो किससे? शरीर के द्वारा। शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। अभी हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, द्वेष होता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है। तो इसी शरीर को लेकर हम कभी दुख भोगते हैं और कभी सुख भोगते हैं। जो हमें पसंद है वो हमको मिलता है तो हम सुखी हो जाते हैं, जो हमको पसंद नहीं है वो हमको मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, यह हो गया एक क्षेत्रज्ञ। दूसरा क्षेत्रज्ञ कैसा है? जैसे कोई राजा है, तो राजा के पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी जमीन है, तो एक एक एकड़ जमीन वो कई सारे किसानों को दे देता है। तो हर किसान के लिए वो जो एक एकड़ जमीन है वो उसके लिए वो क्षेत्रज्ञ है, वो किसान। लेकिन जो राजा है वो पूरी जमीन का क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो पूरी जमीन के बारे में जानता है। ठीक वैसे ही ये आत्मा जो है ये इस शरीर के क्षेत्रज्ञ है, लेकिन भगवान जो है परमात्मा रूप में जो रहते हैं हमारे हृदय में, वो सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, इसलिए वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो कृष्ण भी हमारे साथ, आत्मा के साथ हृदय में बैठे रहते हैं, इसलिए उनको भी क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। अभी एक बड़ा क्षेत्रज्ञ, एक छोटा क्षेत्रज्ञ है। बड़ा क्षेत्रज्ञ सारे जीवों के सारे शरीरों के बारे में जानता है, और जो छोटा क्षेत्रज्ञ है वो केवल अपने शरीर के बारे में ही जानता है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी और चर्चा करते हैं प्रकृति की। तो इस संसार में प्रकृति यानी कि माता दुर्गा हमको बहुत सारी चीजें देती है, कैसे देते हैं? जैसे कि गुब्बारे वाला होता है ना, तो गुब्बारे वाला क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों के सामने वो गुब्बारा लेके आते हैं, वो गुब्बारा दिखाते हैं, और बच्चों का अपने आप से अट्रैक्शन होता है गुब्बारों के लिए, तो बच्चे गुब्बारा लेना चाहते हैं। कभी कभी छोटे पे हम देखते थे, एक गुब्बारा आता था, वो बिल्कुल एप्पल के साइज का होता था, एप्पल जैसा दिखता था, तो हम कहते ये वाला मुझे गुब्बारा चाहिए। माता पिता कहते थे, अरे बेटा ये तुम लोग थोड़ी देर में फूट जाएगा, इससे अच्छा तुम एप्पल खाओ, वो तुम्हारे हृदय कुछ शरीर में तो लगेगा जाके। लेकिन हम कहते थे नहीं, हमको गुब्बारा चाहिए, तो गुब्बारा ले लेते थे, और फिर क्या होता था, कुछ देर बाद फूट जाता था। फूट गया तो फिर क्या करना है, अभी दूसरा गुब्बारा चाहिए। तो ये जो बैलून वाला होता था, ये जो गुब्बारे वाला होता, इसको ट्रिक मालूम है, ये क्या करता था, बच्चों के सामने जहां पार्क में बच्चे वगैरह माता पिता के साथ घूम रहे होते हैं वहां ये घूमता रहता है। अभी देखिए वही बैलून जो हमको छोटे पे बहुत अच्छा लगता था, अभी हमारी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई, बड़े हो गए, तो वह बैलून हमें मालूम है कि इसमें बैलून में कुछ है ही नहीं, फालतू था, कुछ नहीं उसके अंदर हवा भरी हुई है, क्या उससे कुछ क्या क्या है, हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा था पता नहीं उस समय पे, अभी हम वैरन को पसंद नहीं करते। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से बचपन से थोड़ा युवा हो जाता है तो माया दूसरी ट्रिक देती है उसको, फिर उसका अट्रैक्शन एक गर्ल से हो जाता है, लड़का है तो लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है, लड़की है तो लड़का से अट्रैक्शन हो जाता है, फिर इस तरीके से थोड़ा और बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चों से अट्रैक्शन हो जाता है, पैसे से अट्रैक्शन हो जाता है, पैसे के पीछे भागता रहता है। अभी वो 50 साल का हो जाता है, 50 साल बाद सोचता है अरे भाई डॉक्टर के पास चलना है, कैसे शरीर सही रहेगा, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हर जगह दर्द है। तो जो जीव जो इस संसार को एंजॉय करना चाहता है, जो जीव इस संसार को एंजॉय करना चाहता है वो है छोटा पुरुष, पुरुष पुरुष मतलब एंजॉयर। और जो बड़ा पुरुष है वो कौन है? भगवान। पुरुष मतलब होता है भोक्ता, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो क्या हम भोक्ता हैं? वास्तव में हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य हैं। भोग्य मतलब जिसको भोगा जाता है वो। हम भगवान कृष्ण का की नकल करना चाहते हैं, जैसे रावण जो है राम की नकल करना चाहता है, माता सीता उनको भोगना चाहता है रावण, हाँ सीता माता को लेके वो भोगना चाहता है। तो इस संसार में देखा जाता है कि जो चीजें हम ले रहे हैं, जो भी हम भोग भोग रहे हैं, हमें वो भोग वास्तव में कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। सबसे पहले हम अगर वो कृष्ण को अर्पण करेंगे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो इस तरीके से हम इस संसार में सही से रह सकते हैं। अभी ये जो छोटा पुरुष है, ये छोटा पुरुष यानी कि आत्मा है, ये इस प्रकृति के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। कृष्ण से दूर रहकर जब कोई जीव भोग वांछा करता है, भोग की इच्छा करता है, तो माया बिल्कुल पड़ोस में रहती है और उस पर झपट्टा मार के उसको पकड़ लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी चूहा आता है, कुछ खा रहा होता है टेबल पे चढ़ के, और वहीं पे बिल्ली उसका इंतजार कर रही होती, जैसे थोड़ी सी असावधानी होती है बिल्ली क्या करती है, तुरंत झपट्टा मार के चूहे को पकड़ लेती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जो जीव हैं वो भगवान से बहिर्मुख हैं। भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, हम भगवान की मुख की तरफ देख ही नहीं रहे। तो अनादि बहिर्मुख होने के कारण ये जो माया है ये हमको बहुत दुख देती है। हमको जो सुख भी मिलता है ना, वो भी एक प्रकार का दुख ही है। तो माया हमको हमेशा दुख देती रहती है, और वो देखती है छोटा पुरुष है, ये एंजॉय करना चाहता है, इसको दो जितना दुख देना है। तो भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि वो पुरुष हैं और हम जो हैं वो प्रकृति हैं। जीव और राधा रानी और माता दुर्गा, ये तीन जो है ये प्रकृति कहलाते हैं। जीव को बोला जाता है तटस्था शक्ति, राधा रानी को बोला जाता है अंतरंगा शक्ति, और माता दुर्गा को बोला जाता है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब वो शक्ति जो हमें भगवान के निकट लेके जाती है, बहिरंगा शक्ति मतलब वो शक्ति जो भगवान से हमको दूर लेके जाती है। और तटस्था, तटस्था मतलब या तो कभी ये इस स्थिति में रहता है, इस तरफ रहता है यानी कृष्ण की भक्ति करता है, और या कभी माया की तरफ रहता है, तटस्था। तो हम बहुत छोटी शक्ति हैं, और ये दोनों जो है राधा रानी और माता दुर्गा, ये बड़ी शक्ति हैं। शक्ति का कार्य क्या होता है? वास्तव में शक्ति का कार्य होता है शक्तिमान की सेवा करना। तो भगवान कृष्ण है वो शक्तिमान है, और ये दोनों शक्तियां दुर्गा जी और राधा रानी, ये दोनों भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान ने दुर्गा जी को सेवा दिया है कि तुम मेरे से लोगों को दूर रखो जो भोग वांछा करते हैं, और राधा रानी को सेवा दिया है जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मेरे पास लेके आओ, तो वो कर रही है। तो हम लोग जैसे कोई पत्नी है, कोई पत्नी जब उसका पति ऑफिस जाता है या फिर जो है खाना चाहिए होता है उसको, तो पत्नी सेवा करती है अपने पति की, कभी खाना बनाती है, कभी उसके कपड़े धुलती है, या फिर अन्य अन्य तरीके से सेवा करती है, तो क्या होता है? पति प्रसन्न हो जाता है। जब पति प्रसन्न होता है तो पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही भगवान और जीवों का भी संबंध है। जब जीव भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जीव भी प्रसन्न हो जाता है। हाँ? जैसे एक मानिए एक गोल्डन रिंग है, एक सोने की अंगूठी है, उस अंगूठी पे नीलमणि लगी हुई है टॉप पे। वो नीलमणि क्या है? कृष्ण, और सोने की अंगूठी है हम लोग जीव। अगर मान लीजिए वो जो मणि है वो उससे निकाल दी जाए, रिमूव कर दी जाए उस सोने की अंगूठी से, तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। अभी जब जीव भगवान रूपी उस नीलमणि को हृदय में स्थापित करता है, यानी अंगूठी में लगा लेता है, तो जीव भी प्रसन्न हो जाता है और भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। और जब नीलमणि खो जाती है तो जीव जो है भयभीत रहता है, उसको शोक होता है, उसको मोह होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान को सर्च करना है, भगवान को ढूंढना है। और भगवान को ढूंढ के जो हमने अपने हृदय में कचरा भर के रखा हुआ है, उस कचरे को हटा के भगवान को वहां पे स्थापित करना है। ये हमारे कार्य है। इसीलिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेने से क्या होगा, भगवान से हमारी वास्तविक प्रीति होगी और हमारे हृदय में जो कचरा है वो धुल जाएगा और भगवान फिर उस जगह पे आके स्थापित हो जाएंगे। तो अभी हमें जानना चाहिए कि हम लोग जो है वो प्रकृति हैं, हम लोग पुरुष नहीं हैं। पुरुष कौन है? भगवान पुरुष है। तो इस संसार में देखा जाता है कि हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ नायक बनना चाहता है, वो नायक बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हाँ, कुछ ना कुछ वो चाहता है कि मैं कुछ बनूं। कोई बहुत धनी बनना चाहता है, कोई ज्ञानी बनना चाहता है। तो ये जो स्मॉल पुरुष, छोटा पुरुष जो इस शरीर में बैठा हुआ है, यानी कि आत्मा है, वो इस भौतिक संसार को भोगना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा क्या है? भोग करना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। तो ये वास्तव में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जब हम भोग की इच्छा करते हैं तो ये भोग जो है ये गुणों के संग से मिलता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे गंदगी पड़ी हुई है, आपका पैर उसमें गंदगी में घुस गया और आप घर पे आए और पूरा घर भी गंदा कर दिया और स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, किसी ने पूछा कहां से, तो पता चला कि आप ही लेके आए हैं उस गंदगी को, स्मेल आ रही है। तो क्या करना चाहिए फिर? अभी क्या करना चाहिए? अपने जूते को साफ करना चाहिए, स्मेल चली जाएगी, क्लीन कर देना चाहिए। तो वही क्लीनिंग चल रही है हम लोगों की हरि नाम के द्वारा। जब हम हरि नाम लेते हैं तो हम जो जिस तरीके से हम इस गंदे जगह पे रह रहे हैं इस भौतिक संसार में, इससे हम धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे और हम फिर भगवान के धाम में जाएंगे। तो अभी हमने आपको छह चीजों के बारे में बताया, प्रकृति यानी कि हम लोग, पुरुष मतलब भगवान, क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्र के दो लोग हैं, एक भगवान और एक आत्मा, ज्ञान ये सारा ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि उसको ज्ञान बोलते हैं, और गेयम ज्ञान की विषय वस्तु क्या है वो भगवान है, उसके बारे में हमने बताया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से भगवान अर्जुन को समझाते हैं वो हम देखते हैं। तो अर्जुन जड़ पदार्थ आत्मा और ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करता है। जड़ पदार्थ आत्मा और ज्ञान, जड़ पदार्थ यानी प्रकृति और क्षेत्र, आत्मा मतलब पुरुष और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान मतलब ज्ञान और ज्ञेय। तो हमारे जो आज का 13th चैप्टर का शीर्षक है वो क्या है? पुरुष प्रकृति और चेतना। तो अर्जुन इन्हीं के बारे में जानना चाहता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान दूसरे श्लोक से लेकर 7th श्लोक तक कहते हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र है और आत्मा जो है वो क्षेत्र का ज्ञाता है, यानी क्षेत्रज्ञ है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। आत्मा केवल अपने ही शरीर का ज्ञाता है, केवल अपने ही क्षेत्र का ज्ञाता है, लेकिन भगवान जो है वो सारे शरीरों के ज्ञाता है या सारे क्षेत्रों के, समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता है। तो भगवान कृष्ण कर्म क्षेत्र, यहां पे व्यासदेव जो है वो बताते हैं कि कर्म क्षेत्र क्या होता है। कर्म क्षेत्र मतलब स्थूल और सूक्ष्म तत्व। आप लोग एक फोटो देख रहे होंगे, द सोल इज कवर्ड बाई ग्रॉस एंड सटल कवरिंग्स। तो सबसे पहले सटल बॉडी जो हमको हमारे आत्मा के ऊपर कवरिंग जो है वो पहले सटल बॉडी की होती है और उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। तो आत्मा के ऊपर कवरिंग सबसे पहले है मन बुद्धि और अहंकार की। आत्मा बनी हुई है सच्चित और आनंद से, उसके ऊपर कवरिंग है मन बुद्धि और अहंकार की, और उसके बाद एक और कवरिंग है, वो किसकी है? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश की। अभी इंद्रियां और उनके विषय होते हैं, जो भी इंद्रियां हैं उनके कुछ विषय होते हैं, जैसे आंख का विषय है रूप, आंख मतलब देखना, कान का विषय होता है शब्द, नाक का विषय होता है गंध, त्वचा का विषय होता है स्पर्श, और जिह्वा का विषय होता है टेस्ट यानी स्वाद। तो ये उनके विषय होते हैं। जब इस क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी कुछ इच्छा होती है, कभी द्वेष होता है। हमारे अनुकूल होता है तो सुख मिलता है, हमारे प्रतिकूल होता है तो हमको दुख मिलता है। ठीक है, भगवान कहते हैं शरीर क्षेत्र है, आत्मक क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतद्यो वेतितम प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः। थर्ड श्लोक में भगवान कहते हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, शरीर तथा इसके ज्ञाताओं को पूर्ण जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। अभी हम इन पांच, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इन पांच मैं शब्दों के बारे में चर्चा किया है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो सबसे पहले अन्नमय। अन्नमय का अर्थ होता है कि भोजन ही लक्ष्य है। जैसे वो व्यक्ति केवल खाने के बारे में ही सोचता है, ऐसा व्यक्ति अन्नमय स्तर पे जी रहा होता है। जैसे जानवर होते हैं वो खाने के बारे में सोचते हैं केवल, और जानवरों के अलावा कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या, बस खाने के बारे में सोचते हैं। तो वो स्तर जो है, या फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा होता है उसको क्या है, वो जगता है, माँ का दूध पीता है, फिर सो जाता है, फिर जगता है, फिर दूध, फिर सो जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं, अन्नमय स्तर पे वो जी रहा होता है। दूसरा स्तर है, अभी जैसे पूरे दिन वो खाने के बारे में ही सोचता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक केवल खाने के बारे में सोचता रहता है। लेकिन अगर देखें मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन में व्यक्ति दो या तीन बार खाता है दिन में, बाकी टाइम वो भगवान की भक्ति कर सकता है, बाकी टाइम भगवान की भक्ति के लिए दिया हुआ है। तो अन्नमय स्तर में मनुष्य नहीं आता है वास्तव में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जानवर के स्तर पर जी रहे होते हैं, उनको अन्नमय स्तर पर ही हमको काउंट करेंगे। दूसरा होता है प्राणमय। जब वो ये समझ जाता है कि उसको अपने जीवन को बचाना भी है, खाना तो खाना ही है, साथ साथ में अपना जीवन भी बचाकर रखना है, संरक्षित रखना है, तो उस स्थिति को बोलते हैं प्राणमय स्थिति। जैसे कभी कभी कोई कीड़ा वो जा रहा होता है, उसको लगता है कुछ खतरा है, तो अपने वो उदरी कुछ ऐसी स्थिति बना लेता है कि लगता है डेड है, वो बिल्कुल मरा हुआ कीड़ा लगता है, ड्रामा करता है कि वो मर गया है। तो इस संसार में भी ऐसे ही जब खतरा होता है तो क्या होता है, हम उसको फेस करते हैं। तो जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो अगर कुछ प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट के आधार पे या फिर उस लॉस के आधार पे, कभी उसको लॉस होता है, वो अपने को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को संरक्षित बनाए रखने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है। फिर तीसरी स्थिति आती है, उस स्थिति को बोलते हैं ज्ञानमय। ज्ञानमय मतलब उसको कुछ ज्ञान होता है, किस चीज का, मन का, बुद्धि का, कुछ भावनाओं का ज्ञान, सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान, इन सबको वो सराहना करता है और उनको सर्वोच्च मानता है। जैसे कीर्तन, भरतनाट्यम, कोई वीणा बजाना जानता है, कोई करताल बजाना जानता है, मृदंग बजाना जानता है, कोई रंग बिरंगे फूल को देख के उनकी बड़ाई करता है कि देखो कितने सुंदर फूल हैं, हरियाली को देख के बोलता है उसको अच्छी लगती हरियाली, वो कभी कभी इंद्रधनुष देखता है, रेनबो देखता है, तो ये सब मानसिक स्तर पर है। तो ऐसे लोगों को ज्ञानमय लोग बोले जाते हैं। उसके ऊपर है विज्ञानमय। जो लोग आत्मा या ब्रह्म को सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं उनको विज्ञानमय बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर जो उसके ऊपर की स्टेज है, यानी कि जो बेस्ट स्टेज है, वो है आनंदमय स्टेज। आनंदमय स्टेज में व्यक्ति को पता चलता है कि भाई प्रेम करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति भी चाहिए, आत्मा और परमात्मा चाहिए। मैं ब्रह्म हूं और परमात्मा परम ब्रह्म है, इसलिए चलो हम उनकी सेवा करते हैं। तो इस स्थिति में, आनंदमय स्थिति में आके वो भगवान की सेवा करना प्रारंभ करता है और भगवान की सेवा करते करते वो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है, तब उसको वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो है पांच प्राण में, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में, ये बताए गए हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं। शरीर जो हमारा बना हुआ है उसमें 24 तत्व माने गए हैं। ये जो 24 तत्व हैं इनको कार्य क्षेत्र कहा जाता है। तो भगवद्गीता 13.6 में भगवान बोलते हैं, महाभूत्यान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 24 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांच ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीव और त्वचा, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। पांच कर्म इंद्रियां, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। पांच विषय इंद्रियों के, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके विषय। नेत्र का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीव का विषय है स्वाद और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो इस तरीके से पांच 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 20 हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार 23 हो गए। और 24वां है प्रधान। प्रधान क्या होता है? जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनकी अव्यक्त अवस्था, यानी अभी सृष्टि हुई नहीं है उसके पहले की अवस्था को बोला जाता है प्रधान। ये थोड़ा टिपिकल है समझना, हम बाद में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी समझ लीजिए, नाम समझ लीजिए बस। तो 24 तत्वों का जो समूह है वो कार्य क्षेत्र कहलाता है। और जो व्यक्ति इन 24 विषयों का विश्लेषण करता है, यानी एनालिसिस करता है, वो व्यक्ति कार्य क्षेत्र को समझ सकता है। अब देखिए भगवान इस श्लोक में बोलते हैं 13.7 में, इच्छा द्वैषा सुख दुखम संघात चेतना धृति एतक क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहृतम। इच्छा हो रही है कुछ प्राप्त करने की, कभी कभी द्वेष होता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो इस क्षेत्र में इस तरीके से व्यक्ति इस शरीर में भी वो आगे बढ़ता है, कभी उसको जन्म लेना होता है, फिर उसका विकास होता है, पोषण होता है, संतान उत्पत्ति करता है, फिर बाद में क्षीण हो जाता है, मृत हो जाता है बाद में। इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। तो भगवान इस 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कहते हैं कि इच्छा द्वैष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा जाता है और उनकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। अभी आगे 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक में भगवान ज्ञान की पद्धति का वर्णन करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक हैं और ये हमें याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो इनको याद करिए, इन श्लोकों को। अमानित्वम मदंबित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम असक्तिरनभिस्वंगः पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तोन्यथा। अभी यहां पर भगवान 8 से 12 नंबर श्लोक में ज्ञान की पद्धति का वर्णन करते हैं। ज्ञान और ज्ञेय, जो जानने के योग्य है। तो ज्ञान मतलब 8 से 12 में जो श्लोक बताए, श्लोक में जो गुण बताए गए हैं उनको विकसित करना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जो गुण बताए गए हैं उनको विकसित करना क्या है? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है? आत्मा जानने योग्य है और परमात्मा जानने के योग्य है। आत्मा क्या है? जो ब्रह्म है, सनातन है और भगवान के अधीन है, उसको आत्मा बोला जाता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी है, प्रकृति के गुणों से परे है, सभी परिस्थितियों में समन्वयी है, अविभाजित है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के स्रोत है। तो एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय को केवल भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। चलिए एक चीज हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, क्षेत्रज्ञ वाली बात। मायावादी क्या बोलते हैं? हम जैसे बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक क्षेत्रज्ञ आत्मा और दूसरा क्षेत्रज्ञ भगवान, तो दोनों हमारे शरीर में ही रहते हैं। मायावादी क्या बोलते हैं? वो क्षेत्रज्ञ एक ही है, दो नहीं है, यानी वो आत्मा और परमात्मा को क्या मान लेते हैं? एक ही मान लेते हैं, वो उनकी समस्या है। भगवान कह रहे हैं च मैं भी हूं। मैं भी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी मैं पूछूं कौन कौन क्लास में है, तो मान लीजिए 22 लोगों ने बोल दिया हम क्लास में हैं, 23वें ने बोला मैं भी हूं। मैं भी का अर्थ होता है वो लोग भी हैं और मैं भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं भी हूं बोलने से मतलब मैं अकेला ही हूं, नहीं। अगर मैं अकेला ही हूं बोलना होता तो हम क्या बोलते हैं? मैं हूं या मैं ही हूं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि कोई और भी है तो हम बोलते हैं मैं भी हूं। तो भगवान वैसे ही बोल रहे हैं मैं भी हूं, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं? वो इसको अलग अर्थ में ले लेते हैं। तो आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की 20 पद्धतियां हमने अभी चर्चा किया, उसके बाद 13 नंबर श्लोक से लेकर 19 नंबर श्लोक तक। अभी भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि उन साधनों के द्वारा क्या किया जाता है, जो ज्ञेयम है, जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, ज्ञान के लक्ष्य हैं, उन साधनों से क्या किया जाता है। बोलते हैं कि ज्ञान के लक्ष्य जीवात्मा और परमात्मा ये दो हैं, ये ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञेयम मतलब आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, ये दो चीजें। तो भगवान 13वें नंबर श्लोक में बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। बोलते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषयों में बारे में बताऊंगा जिसे जानकर तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इस बारे में बताते हैं भगवान। फिर 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं ज्ञेय के बारे में, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो सुखम मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ है, पांव है, आंखें हैं, सिर तथा मुंह है और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो वो सर्वव्यापी हैं परमात्मा, ये उनका गुण बताया गया है। 15 नंबर श्लोक में उनका मुख्य गुण बताया गया कि वो दिव्य है। और 16 नंबर श्लोक में बताते हैं, कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत्विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चतत्। जो परम सत्य है, परमात्मा है, वो जड़ और जंगम दोनों के बाहर और भीतर दोनों जगह स्थित है। वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रियों के द्वारा देखे नहीं जा सकते, जाने नहीं जा सकते। हालांकि वो अत्यंत दूर रहते हैं फिर भी हमारे सबसे निकट है, हमारे हृदय में रहते हैं। एक्चुअली आत्मा के सबसे निकट में कौन रहता है? परमात्मा। कोई कहेगा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, लेकिन नहीं, सबसे निकट में कौन है? परमात्मा, भगवान सबसे निकट में है हमारे। तो ये 16 नंबर श्लोक में बताते हैं कि भगवान सभी परिस्थितियों में समन्वयी हैं। और 17 नंबर श्लोक में बताते हैं कि भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो अविभाजित हैं, पोषक हैं, संहारक हैं। तीन चीजें बताते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् गृषिष्णु प्रभु विष्णु च। बोलते हैं परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वो विभाजित नहीं है, वो एक रूप में स्थित है, वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, पोषण देने वाला है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वो जन्म भी देता है और संहार भी वही करता है। तो इस प्रकार भगवान ने गेय के बारे में बताया। अभी 13.18 में भगवान इस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि ये जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हृदय सर्वस्य वो परमात्मा ही है, वही गेयम है। ज्योतिषाम पितत ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं और वो सबके हृदय में स्थित है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में वो स्थित है। तो इस प्रकार भगवान ने परमात्मा के बारे में बताया जो ज्ञेय है। अभी भगवान पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं 20 नंबर श्लोक से लेके 26 नंबर श्लोक तक। पुरुष तो इस संसार में चलिए 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। इसका अर्थ अनादि मतलब जिनका जन्म कभी नहीं हुआ है, हमेशा से रहते हैं। तो प्रकृति भी हमेशा से रहती है और जीव भी हमेशा से रहते हैं। उनके विकार तथा गुण जो हैं वो प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हमको प्रतीत होने चाहिए, वो प्रतीत होते हैं या वो हैं। तो पुरुष और प्रकृति में इस संसार में जो कुछ भी होता है वो ये समझिए कि पुरुष जो है अपनी पहचान प्रकृति से करता है। जब पुरुष अपनी पहचान प्रकृति से करता है तो सुख और दुख को भोगता है और भोग करने की इच्छा के कारण वो प्रकृति में फंस जाता है। जो जीव है वो जब भोग करने की इच्छा उसके अंदर होती है तो फंस जाता है। जैसे कभी कभी कोई लड़का है, बहुत सुंदर लड़की को देखता है तो उसके अंदर जो है काम वासना जागृत हो जाती है, उसका पीछा करना शुरू करता है। या फिर कभी कोई व्यक्ति है जो लोभी है, या कभी कोई व्यक्ति है वो अन्य चीजों से इस प्रकार वो इन चीजों में फंसने लगता है, इस प्रकृति में फंसना शुरू कर देता है। कभी कोई व्यक्ति क्रोधी होता है तो क्रोध में फंस जाता है, कभी कोई लोभ में फंस जाता है, कोई काम में फंस जाता है। तो दुख मतलब क्या है? टू गेट व्हाट यू डोंट वांट एंड यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए वो आपको मिला नहीं और आपको वो मिला जो आपको चाहिए नहीं, उसको क्या बोलते हैं? दुख। तो कभी कभी इस संसार में हम देखते हैं, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो देखते हैं, अरे भाई अच्छा है चलो हम दो ही लोग हैं सीट पे, हाँ तीन लोग नहीं है। और ऐसा करके सोच ही रहे होते हैं तब तक कोई एक बहुत मोटा सा व्यक्ति आ जाता है, बोलता चलो उधर बढ़ो, और वो हमको हमारी सीट ले लेता है या फिर वो बैठ जाता है। अभी हम लोगों को बैठने में दिक्कत होती है। तो कर्म बंधन में हम बंध ही जाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ट्रेन में जब चलते हैं तो पकौड़े वाले आते हैं, वड़ा वाले आते हैं, क्या क्या वो लोग लेके आते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उस समय हमारी इंद्रियां जो है तुरंत उसकी इच्छा करने लगती है, चलो समोसा खा लेते हैं, पकौड़ा खा लेते हैं, वड़ा खा लेते हैं करके हम तुरंत बुद्धि जो है आदेश देती है मन को, चलो पैसा निकालो और पैसा निकाल के समोसे खाओ, और समोसा खा लेते हैं उसके बाद रात में पेट दुखता है क्योंकि उसने पता नहीं किस भावना से किस तेल को यूज करके उसने बनाया हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है? भोग करने की इच्छा से हम भोग से भी पीड़ित होते हैं और साथ साथ में कर्मबंधन में भी फंस जाते हैं, बाद में पेट दर्द होता है। तो हमारे जो हमारा मन है उसके अंदर मल भरा हुआ है और हमें क्या करना है? उसको निकालना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो मन से मल को हम तब निकाल सकते हैं जब हम भगवान का नाम लेंगे। चलिए इस पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं 20 से 26 में। देखिए ये व्यक्ति जब पुरुष अपनी पहचान प्रकृति से करता है तो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। सभी अच्छे और बुरे प्रसंग प्रकृति में होते हैं। जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, वो एक लड़का है वो लड़की को देख रहा है, वो लड़की लड़के को देख रही है, फिर काम वासना जागृत हो रही है, या फिर कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, हाँ इस तरीके से वो फंसता चला जाता है इस संसार में। भोग करने की इच्छाओं के कारण पुरुष जो है वो प्रकृति के वश में चला जाता है। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने परमात्मा के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया था, अब वे बता रहे हैं कि जीव कैसे माया के संपर्क में आता है। तो शरीर की उत्पत्ति और शरीर में होने वाले परिवर्तन दो चीजों के बारे में बता रहे। बोलते हैं 20 में कि प्रकृति और पुरुष जो है वो सनातन है, और ये 21 नंबर श्लोक कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचिते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुचिते। बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो समस्त भौतिक कारण और कार्यों की हेतु कहलाती है, यानी उसके कारण हो रहा है, और जीव जो है वो इस संसार में सुख दुख के भोग का कारण कहलाता है। जीव क्या है? वो सुख दुख जो भोग रहा है उसका कारण जीव है, और इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है? प्रकृति है। अगला श्लोक, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृतिंजान गुणान कारणम गुण संगोस्या सद सद्यो निजन्मसु। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस इस प्रकार जीव जो है वो प्रकृति के गुणों का भोग करते हुए प्रकृति में ही जीवन बिताता है, भुंगते प्रकृति जान गुणान, और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसको कभी उत्तम योनि मिलती है, कभी अधम योनि मिलती है, कभी उसको नरक में जाना होता है, कभी स्वर्ग में जाना होता है, कभी वापस इस पृथ्वी पे भेज दिया जाता है उसको। अब भगवान बताते हैं, एक अन्य प्रकार के पुरुष परमात्मा है जो साधारण पुरुषों की तरह नहीं उलझते। साधारण पुरुष उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, पर परमात्मा नहीं फंसते, और उसको जान लेने पर फायदा क्या होता है? उस व्यक्ति की मुक्ति जो है वो सुनिश्चित है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब साक्षी, सब कुछ देखने वाले, अनुमंता अनुमति देने वाले, सैंक्शन करने वाले, चा भर्ता, भर्ता मतलब स्वामी, भोक्ता, भोक्ता मतलब परम भोक्ता, महेश्वरः, महेश्वरः मतलब सबके ईश्वर, परमात्मा, इति जा अपियुक्तो, उसको निसंदेह कहा गया है कि वो दिव्य है, दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, परमात्मा कहलाता है। हाँ, तो अभी इसी जो ज्ञान हमने पहले अर्जित किया उसका लाभ क्या है? 24 नंबर श्लोक में उस ज्ञान का लाभ बताया गया है। या एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो इस प्रकार प्रकृति जीव प्रकृति के गुणों के अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या है इस ज्ञान का? मुक्ति। ज्ञान का रिजल्ट मुक्ति। ज्ञान कर्म यो अभी अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, 25 नंबर श्लोक, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अभी कुछ लोग होते हैं वो परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान योगी होते हैं ज्ञान के द्वारा अनुशीलन करते हैं, और कुछ लोग कर्म योगी होते हैं जो कर्म योग के महत्तर हैं वो उनको देखने का प्रयास करते हैं। इनसे अच्छे लोग हैं, 26 नंबर श्लोक में बताया भगवान। देखिए हर जगह भगवान ने ज्ञान योग अष्टांग योग और कर्म योग से ज्यादा अच्छा किसको बोला है? भक्ति योग। अन्य त्वेव मजानंतः सुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। अभी ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं पर अन्य लोगों से वो परम पुरुष के विषय में सुनकर उस परम पुरुष की पूजा करने लगते हैं। ये लोग प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब बताइए कितना इजी है ये। केवल सुनकर भगवान की पूजा करने लगते हैं, ज्ञान नहीं होता इतना, लेकिन सुनते हैं उच्च भक्तों से और वो फिर भक्ति करने लगते हैं और वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कितना इजी है। इसलिए सरलतम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो गार्डन वाले से पूछने लगे, ऐसे प्रश्न पूछने लगे, और गार्डनर जो था माली जो था वो सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। तो उन्होंने पूछा तुम्हें यह सब ज्ञान कहां से हुआ? उसने कहा गुरु महाराज मैं आपकी क्लासेस में बैठता हूं, क्लासेस अटेंड करता हूं, उससे सारा ज्ञान हो गया। तो केवल सुनने मात्र से सारा ज्ञान हो जाता है। तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सुन सुन के सब समझा जा सकता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से भावना रखता है तो सब समझ में उसको ज्ञान आएगा। 27 नंबर श्लोक, ये हो गया। कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, 26 नंबर श्लोक तक भगवान ने सारे उत्तर दे दिए। अभी 28 से 35 तक भगवान ज्ञान की दृष्टि के बारे में बताएंगे। वाइजेस्ट में एस यानी सीकर टू सीयर। 27 से 29 में भगवान तीन चीजों को बताते हैं खास करके। 27 में बताते हैं, कहते हैं कि ये जान लो चर तथा आचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञाता यानी क्षेत्र और क्षेत्र के। दूसरा बोलते हैं समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो है समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अभी देखिए ये जो प्रभु जी हैं महाराज जी जो हैं वो देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, सबके अंदर आत्मा को भी देख रहे हैं और परमात्मा को भी देख रहे हैं। और वो ये जानते हैं ये शरीर नष्ट होगा लेकिन न तो आत्मा नष्ट होगी न परमात्मा नष्ट होगा। इसी व्यक्ति को बोला जाता है, यही व्यक्ति वास्तव में देख रहा है, बाकी लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है। साथ साथ में बोलते हैं 29 नंबर श्लोक में, कहते समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थित मीश्वरम न हीनश्चित्तात्मनम ततो याति परम गति। जब वो इस तरीके से देखता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। न हीनस्ति, वो गिरता नहीं है कभी भी नीचे, वो अपने आप को पथभ्रष्ट नहीं करता है। हाँ, वो सब जान जाता है और जो है वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये व्यक्ति जो है ये कुत्ते के अंदर, गाय के अंदर, हाथी के अंदर, महावत के अंदर, चांडाल के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, सबके अंदर भगवान को दर्शन करता है, आत्मा और भगवान को देखता है। जैसे एक व्यक्ति ट्रक में जा रहा है, ट्रक चला रहा है, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ट्रक चलाने वाला साइकिल चलाने वाले के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, बोले हम शक्तिशाली ज्यादा है हम तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, नहीं। ऐसे ही साइकिल जो चला रहा है एक चींटी भी है, चींटी में जीव जो है वो चींटी में भी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी जीने का मौका दें, उसके अंदर भी भगवान का दर्शन करें, आत्मा और परमात्मा का दर्शन उसके अंदर भी करें, उस चींटी के अंदर भी करें। ऐसा नहीं बेवजह उनको मारना शुरू कर दें, भले ही वो छोटा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बड़ा उसको मार दे, क्योंकि आत्मा भी बैठा हुआ है परमात्मा के साथ वहां पर। ओके, भगवान 30 नंबर श्लोक बोलते हैं, प्रकृते वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 नंबर श्लोक, जीव जो है वो कोई कार्य नहीं करता है, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे। आत्मा जो है वो कभी भी कोई कार्य नहीं करता है। आत्मा केवल एक चीज करती है, क्या, इच्छा करती है। आत्मा केवल इच्छा करती है, करने वाला कौन है, प्रकृति। प्रकृते वच कर्माणि, सारे कार्य जो है वो शरीर द्वारा संपन्न किए, शरीर मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, आत्मा कभी भी कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ रूप से देखना है। आपको फोटो दिख रही होगी, इसमें तीन गुण दिख रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो है हम जीवों से कुछ भी करवाते हैं, शरीर से कुछ करवाते हैं, परंतु जीव जो है वो कभी भी क्षेत्र में फंसता नहीं है, वो कार्य नहीं करता कभी भी। यदा भूत पृथक भावम एकस्थाम अनुपस्थिति तथा च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, उसकी दृष्टि ब्रह्म बोध की दृष्टि हो जाती है, हर जगह वह भगवान का और जीवों का दर्शन करता है। और 32 नंबर श्लोक में भगवान साफ साफ बोलते हैं, कहते हैं अनादित्वा निगुणत्वात् परमात्मा मव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग हैं वो देख सकते हैं कि आत्मा जो है वो दिव्य है, शाश्वत है और गुणातीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है, ना करोति ना लिप्त। अभी भगवान उदाहरण देते हैं, यथा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। आकाश जो है सर्वव्यापी है लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण वो लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहता है लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होता, वो अलग रहता है। और 34 नंबर श्लोक में बताते हैं कि किस तरीके से आत्मा जो है वो चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। यथा प्रकाश यत्तेका कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार सूर्य जो है सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है अकेले, वैसे ही आत्मा जो है वो पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हमारे पूरे शरीर में चेतना है, हम मतलब हम जैसे आगे को देख रहे हैं, फिर पीछे से कोई छुएगा तो हमको पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि चेतना है वहां पे। तो ऐसे ही चेतना कहां से आ रही है? क्योंकि जीव इस शरीर के अंदर है। अभी इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर अचेतन हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान अभी इस अध्याय को खत्म करते हुए इसकी फलश्रुति बोलते हैं, यानी अंत में इसका लाभ क्या होता है। बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को समझते हैं वो भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये आज का 13वां अध्याय था, थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है। हमने इसमें 6 चीजों को जाना, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय, और साथ साथ में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे शुरू में जिनमें इन सारी चीजों के बारे में था वो भी हमने जानने का प्रयास किया। ज्ञान की पद्धति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, खोजी क्या है, दृष्टा क्या है, ये सब हमने जानने का प्रयास किया यहाँ पे। अभी इस अध्याय में किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी।
34 श्लोक में अर्जुन को